आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। कुछ ही दिनों में आप गौर पूर्णिमा मनाओगे। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। मैंने सोचा कि आज महाप्रभु जी के ऊपर थोड़ी चर्चा की जाए और उन्होंने क्या शिक्षा दी उस पर भी थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि अगर हम उनकी शिक्षा को अपनाएं तो जीवन सफल होगा। तो चैतन्य चतुर्वेदी तक के 22वें अध्याय में महाप्रभु ने इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को देख लिया। अनुप संकल्प राक्षस वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कल्पने शरणागति अनुवाद
प्रकार से। शरणागति के 6 विभाग ये है: भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार, कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। पूर्ण शरणागत व्यक्ति में निम्नलिखित 6 लक्षण पाए जाते हैं: 1, भक्त को भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात को स्वीकार करना होता है। 2, उसे भगवान की सेवा के प्रतिकूल हर बात का बहिष्कार करना चाहिए, इसे परित्याग भी कहते हैं। 3, भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, उनके अतिरिक्त अन्य कोई सुरक्षा प्रदान भी नहीं कर सकता। इस तरह से अश्वस्त होना श्रद्धा कहलाता है। यह श्रद्धा उस निर्विशेषवादी की श्रद्धा से भिन्न है जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ब्रह्म तेज में तादात्म्य होना चाहता है, भक्त को सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। इस तरह कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और भक्ति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं। 4, भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अपना परम पालक तथा स्वामी माने। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा किसी अन्य देवता द्वारा की जा रही है। उसे कृष्ण को अपना एकमात्र रक्षक मानते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। भक्त को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तीनों लोकों में कृष्ण के अतिरिक्त तो उसका अन्य रक्षक या पालक नहीं है। 5, आत्मसमर्पण का अर्थ है यह स्मरण रखना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। भक्त पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित होता है और जैसा कृष्ण चाहते हैं उसी तरह वह कर्म करता है तथा सोचता है। और 6, भक्त विनीत तथा दीन होता है। भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। हरेक के हृदय में स्थित रहकर कृष्ण जीव की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न आचरण करते हैं। जीव की स्थिति माया या कृष्ण के निजी संरक्षण के अंतर्गत होती है। जब जीव पूर्णतया शरणागत होता है तो वह कृष्ण के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहता है और कृष्ण उसे सारी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। किंतु अभक्त माया के संरक्षण में होने से कृष्ण के साथ अपने संबंध को अधिक अधिक भूल जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कृष्ण किस तरह विस्मरण कराते हैं। कृष्ण अपने भक्त के भौतिक कार्यों को भुलावा देते हैं और माया के द्वारा अभक्तों से भगवत भक्ति भुलावा देते हैं, यही अपोहन कहलाता है।
चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, उन्हें गुप्त अवतार कहा जाता है। भगवतम के सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं आप गुप्त अवतार हो। गुप्त अवतार का अर्थ है छुपा हुआ अवतार। भगवान अवतार है पर ये दावा नहीं करते कि मैं अवतार हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे एक भक्त के रूप में। माता का नाम था सची माता, पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर प्रकट हुए थे। अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर प्रकट हुए थे महाप्रभु से पहले, और जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो दोनों की इच्छा थी इस बात का उद्धार केवल भगवान ही कर सकते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं चौथे अध्याय में, यदा यदा ही धर्म अलग अलग समय में मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। फिर इसलिए भाई तो मेरा साधना मेरे शिक्षा दृष्टिकोण धर्म संस्था पुनः धर्म के लिए उनकी स्थापना करेंगे। तो इसके ये अर्थ नहीं कि कोई धोबी व्यक्ति ये दावा करे मैंने भगवान का अवतार किए स्वीकार कर रहे। भगवान के प्रमाणिक अवतारों के विषय में आप शास्त्र में उनका ज्ञान प्राप्त करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस कलयुग के भगवत प्राप्ति के साधन का उच्चार करने के। जब वो छोटे थे रोते थे जैसे दूसरे बच्चे रोते हैं। उन्होंने कब रोकते थे जब उनकी माता और पड़ोस की औरतें हरिनाम करती थी। चेत हरिदास ठाकुर और अंबेदाचार्य उन्होंने बड़ी गहरी प्रार्थना की थी कि भगवान प्रकट हो परि दोनों उद्धार करने के लिए, और महाप्रभु छोटी आयु में ही उन्होंने दिव्य लीला भी प्रकट की। विषय में तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक है चैतन्य चरितमृता, जिसकी रचना कृष्ण त्यागराज ने की और जिनका प्रभुपाद ने अनुवाद किया। एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, जिन्हें व्यासदेव का अवतार माना जाता है। और एक और है चैतन्य मंगलो, जिसकी रचना रूपचंददास ठाकुर ने की। चैतन्य मंगल का पहले नाम रूपचंददास ने चैतन्य भगवत रखा। तो जब उन्होंने देखा कि वृंदावन दास ने चैतन्य भगवत नाम दिया, तो उन्होंने चैतन्य मंगल दिया। और चैतन्य चरितमृता में बड़ा गहरा सिद्धांत है। चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में भी सिद्धांत है, पर चैतन्य भागवत में भगवान के लिए लीलाओं का वर्णन है, क्योंकि चैतन्य चरितमृता में भी है। और प्रभुपाद जी ने ज्यादा बल दिया चैतन्य चरितमृता के ऊपर। छोटी आयु में ही महाप्रभु संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। और उस समय नवदेव धाम जो था बड़ा पवित्र स्थान था। यहाँ की संस्कृत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर उपस्थित थे। नवदेव आज अगर आप भौतिक दृष्टि से देखो धाम में जब आप जाते हो, तुम्हें धाम पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तो छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। और उस समय के जितने प्रसिद्ध विद्वान थे सबको उन्होंने हरा दिया था। सिर्फ एक था केशव कृष्णगिरी, जिसे उनके जिनसे उनका परिचय नहीं हुआ था। तो केशव कृष्णगिरी ने भारत के सब पंडितों को हरा दिया था। उसे पता था कि नवद्वीप में अनेक विद्वान हैं, और खास करके एक छोटा पंडित है 11 साल का, जिस कहा जाता है कि उसका सबसे अधिक ज्ञान है। तो केशव कृष्णगिरी ने सूचना भेजी नवद्वीप के पंडितों को कि मैं आपके शहर में आकर आपके प्रतिनिधियों से डिबेट करना चाहता हूँ। तो उनके पंडित घबरा गए कि उन्होंने ये सूचना मिली कि केशव कृष्णगिरी हमारे शहर में आना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें डर था केशव कृष्णगिरी के सामने वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो पंडितों ने ये निर्णय किया, हम तो सामने नहीं आएंगे, हम हमारे शहर के जो सबसे छोटा पंडित है उसको आगे कर देंगे। सबसे छोटा पंडित कौन था? और उनमें ये भाव था कि अगर किसी हालत केशव कृष्णगिरी हार जाए निमाई के सामने, तो हम कह सकेंगे अगर हमारे शहर का बच्चा उसे हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़। और अगर किसी हालत हम हार जाए, किसी हालत निमाई हार जाए, तो हम कह सकेंगे आखिर बच्चे को तो हराया, हमें थोड़ी हराया।